आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सियासी रहनुमा वोटरों को रागिब करने की आखिरी कोशिशों में सरगर्म हैं। वक्फ बिल से मुतालिक जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मुल्क मुखालिफ बयानियों का खात्मा करें। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड्स के विच्क आन जी इलाके में बाबकार टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। और मर्दों के T20 क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। अब खबरें तफसील से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने वोटरों को रागिब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इन पार्टियों के रहनुमा राजधानी में रोड शो और अवामी जलसे कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 70 अरकान पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए बुध के रोज वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती इतवार को की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सेरुखी मुकाबला नजर आ रहा है। यहां 1,56,00,000 से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे और उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। कौमी राजधानी में वोट डालने के लिए कुल 13,760 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतखाबी कमीशन बड़ी तादाद में वोटरों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए राय दहिंदगान के मुआफिक कई इकदाम कर रहा है। पोलिंग के अमल में तेजी लाने और वोटिंग के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए कतार के बंदोबस्त का हल QMS ऐप का आगाज किया गया है। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा एहलकारों, 19,000 होमगार्ड्स और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस की 220 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सुपर्णा सायका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक मुश्तरका कमेटी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल ये रिपोर्ट पेश करेंगे। वो मुश्तरका कमेटी को फराहम किए गए शवाहिद का रिकॉर्ड भी पेश करेंगे। ये रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को 30 जनवरी 2025 को पेश की गई थी। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक इस मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने रिपोर्ट के मुसवदे को 29 जनवरी को मंजूर किया था और नजरसानी शुदा बिल में तरमीम की थी। अलबत्ता ओपोजिशन रहनुमाओं ने इस रिपोर्ट पर अपनी मुखालिफाना राय जाहिर की है। जेपीसी ने इससे पहले वक्फ बिल को 1995 में 25 तरमीमात करके मंजूर किया था। पार्लियामेंट का मौजूदा बजट इजलास 31 जनवरी को शुरू हुआ है और ये 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन और आबादियों के मुंतकिल हो जाने से इंतखाबी सियासत में गड़बड़ पैदा हो जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क मुखालिफ बयानियों का खात्मा करें। जनाब जगदीप धनखड़ ने, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर भी तश्वीश का इजहार किया है। अकाउंटेंट्स के आलमी फोरम की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, जिसका एहतमाम कल कौमी राजधानी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के भारतीय इदारे ICAI ने किया था, उन्होंने कहा कि नौजवानों को मौजूदा चैलेंजों पर तश्वीश लायक होनी चाहिए।
Our nation cannot afford to have millions of illegal migrants. We cannot allow our electoral politics to be disturbed by demographic dislocations and earthquakes.
इस तश्वीश का इजहार करते हुए कि कुछ लोग और तंजीमें मुल्क के तरक्याती सफर से खुश नहीं हैं, नायब सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि सनसनी और बयानिये पैदा करने का एक रुझान चल पड़ा है। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि इन मुल्क मुखालिफ बयानियों को खत्म करने और भारत मुखालिफ ताकतों को शिकस्त देने की ताकत उनके हाथों में है।
I appeal to youth, I appeal to platinum category of young minds to neutralize anti-national narratives, to defeat those forces that are inimical to India. Your mind should be concerned with existential challenges we are facing.
نائب صدر جمہوریہ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ اقتصادی وطن پرستی کا جذبہ بھی پیدا کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے طریقہ کار بھارتی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بھارت کی خلائی تحقیق کی تنظیم اسرو نے کل بتایا ہے کہ این وی ایس دویم سیارچے کو مقررہ مدار میں پہنچانے کی اس کی کوششوں کو اس وقت دھکا لگا جب اسے لے جانے والے راکٹ میں آگ نہیں لگ سکی۔ این وی ایس دویم سیارچہ خلا میں موجود رہ کر سمت اور جائے وقوع معلوم کرنے والا بھارت کا اپنا نظام ہے۔ اسے 29 جنوری کو جی ایس ایل وی ایم کے 2 راکٹ کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ یہ سیارچہ سری ہری کوٹا سے خلائی اسٹیشن سے بھیجا جانے والا اسرو کا 100واں سیارچہ ہے۔ فی الحال یہ سیارچہ زمین کے ایک ایسے مدار میں گردش کر رہا ہے جو سمت اور جائے وقوع معلوم کرنے کے کام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اب اس سیارچے کو اس کام کے لیے استعمال کرنے کے مقصد سے دوسرے طریقہ کار تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اسرو نے کہا ہے کہ زمین سے اس سیارچے کے ساتھ مواصلات کا سلسلہ قائم ہو گیا ہے۔ جموں کشمیر میں ایمز دلی کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ایم سری نواس کی قیادت میں 6 ارکان پر مشتمل ماہرین کی ایک ٹیم نے کل رجوری ضلع کے بڑھال گاؤں کا دورہ کیا، جہاں پر اسرار بیماری کے سبب 17 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ماہرین کی ٹیم میں ٹاکسیکولوجی کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ ماہرین کی ٹیم نے گاؤں کے متاثرہ کنبوں کے گھروں کی باولی سے پانی اور دیگر غذائی اشیاء کے نمونوں کو اکٹھا کیا۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ماہرین کی ٹیم نے کل بڑھال گاؤں کا دورہ کیا اور گاؤں میں متاثرہ کنبوں کے بند گھروں سے پانی اور غذائی اشیاء کے نمونوں کو اکٹھا کیا۔ ان نمونوں کی جانچ کی جائے گی اور اموات کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے گا۔ آسٹریلیا میں شمالی کوئنز لینڈ میں پچھلی 6 دہائیوں کا شدید ترین سیلاب آیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں جمعے کے روز سے 1000 ملی میٹر بارش ہو رہی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال خطرناک ہے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق ایک خاتون انگھم علاقے میں زندگی بچانے والی کشتی کے الٹ جانے کے حادثے میں ہلاک ہو گئی، جبکہ ہزاروں لوگوں کو اپنے گھروں سے منتقل ہونا پڑا ہے۔ ٹاؤن ویلے علاقے میں 1700 گھر پانی سے گھرے ہوئے ہیں اور لوگ بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ سڑکیں بند ہو جانے کے سبب بچاؤ کوششوں میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ٹاؤن ویلے ہوائی اڈا بند ہو جانے کے سبب سپلائی میں کمی آ گئی ہے۔ نیز سپر بازاروں میں تازہ خوردنی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے۔ مقامی لوگوں کو مگر مچھوں سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی قدرتی آفات آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہی ہیں۔ اور اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں بسنت پنچمی کے موقع پر مہاکمبھ کا تیسرا امرت اسنان جاری ہے۔ امرت اسنان مہاکمبھ میلے کی سب سے زیادہ اہم اور مقدس رسم ہے۔ پہلا امرت اسنان 14 جنوری کو مکر سنکرانتی کے موقع پر، جبکہ دوسرا امرت اسنان مونی اماوسیہ کے موقع پر کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اتر پردیش سرکار نے سیکیورٹی کا پختہ بندوبست کیا ہے۔ مہاکمبھ میلے کے علاقے میں گاڑیوں کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں وی آئی پی کے داخلے کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کی حیثیت سے شناخت شدہ مہاکمبھ میلہ 13 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ مہاکمبھ میں اب تک 35 کروڑ سے زیادہ عقیدت مند پوتر ڈبکی لگا چکے ہیں۔ اب ہم پریاگ راج میں تریوینی سنگم پر موجود اپنے نامہ نگار دیپیندر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے وہاں کے نظارے کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ جی دیپیندر، بسنت پنچمی کے موقع پر امرت اسنان کے لیے آپ لوگوں میں کیسا جوش و خروش دیکھ رہے ہیں؟
جی اسلم، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو جو ہے سنگم میں اسنان کر رہے ہیں۔ یہ جو گنگا یمنا سرسوتی کا جو پوتر سنگت تٹ ہے، ایسا لگ رہا ہے مانو آستھا کے بیار بہ رہی ہو۔ ہر ہر گنگے کو گھوش سے سموچا واتاورن جو ہے فی الحال بھکتیمے ہو اٹھا ہے۔ لاکھوں کی سنکھیا میں شردھالو، جس میں مہیلاؤں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے، وہ یہاں پر جو ہے گنگا میں ڈبکی لگا رہی ہیں۔ ایسا مانیتا ہے اسلم کی آج کے دن اسنان کرنے سے سبھی پاپوں کا ناش ہوتا ہے اور موکش کی پراپتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سادھو اور سنت بھی جو ہے کافی سنکھیا میں یہاں پر جو ہے اسنان کر رہے ہیں اور شردھالو جو ہے ان کا جو ہے سواگت کر رہے ہیں۔ جی اسلم،
ہاں، خوش اسلوبی سے امرت اسنان کرانے کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟
اصل بتا دوں کہ شردھالوؤں کی سرکشا کے لیے جو ہے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں جو ہے اترکت سرکشا بلوں کی اس بار تعیناتی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلیکاپٹر، ڈرون، سی سی ٹی وی کے مادھیم سے پورے میلہ چھیتر کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ شردھالوؤں کے آنے اور جانے کے لیے جو ہے اس بار الگ الگ مارگ نردھارت کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے وہ پوتر اسنان کر سکیں۔ اس کے علاوہ میلہ چھیتر میں سبھی پرویش مارگوں پر جو ہے سول پولیس کے ساتھ ساتھ پیرا ملٹری فورس کے جوان بھی تعینات ہیں۔ मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों की 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। और एक बात बताऊं कि संगम नोच पर महिलाओं की ज्यादा भीड़ होने के कारण महिला सीआरपीएफ की 2 कंपनियों को तैनात किया गया। जी असलम
जी, ताजा तरीन जानकारी के लिए आपका शुक्रिया दीपेंद्र। कोंगो के किंशासा में वाकई भारतीय सिफारतखाने ने बुकाबू में रहने वाले सभी भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाएं। इस तरह की खबरें हैं कि M23 बागी बुकाबू से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। सिफारतखाने ने कहा है कि हवाई अड्डे, सरहदें और तिजारती रास्ते अभी खुले हुए हैं। सिफारतखाने की तरफ से जारी हिदायत में सख्ती से खबरदार किया गया है कि बुकाबू का सफर न किया जाए। सिफारतखाने ने सभी से कहा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए कोई हंगामी मंसूबा तैयार करें। किंशासा में भारतीय सिफारतखाना मशरकी कोंगो में सलामती की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल या मालूमात के लिए भारतीय सिफारतखाने ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, +24389002431। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, +24389002431। जापान की खलाई एजेंसी ने कहा है कि उसने अपने नए H3 रॉकेट के जरिए समत और जाय वकुआ तलाश करने वाले सैयारचे को कामयाबी के साथ खला में भेजा है। जापान की तरफ से इस सैयारचे को भेजने का मकसद जाय वकुआ का मजीद बारीकी के साथ पता लगाना है। उम्मीद है कि यह सैयारचा तकरीबन 2 हफ्ते में अपने मदार में पहुंच जाएगा। शतरंज में नेदरलैंड्स के विज आन जी में कल रात भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश को बेहद दिलचस्प टाई ब्रेकर मुकाबले में हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का बावकार खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा विश्वनाथन आनंद के बाद इस बावकार खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद ने साल 2006 में यह खिताब हासिल किया था। मर्दों के T20 क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन के बड़े फर्क से हराया। इस तरह भारत ने यह सीरीज 4-1 से जीत ली है। जीत के लिए 248 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम महज 10 ओवर्स 3 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हो गई। सलामी बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए। टेबल टेनिस में WTT 2025 सिंगापुर स्मैश में भारत की मुहिम जारी है। आज खवातीन सिंगल्स के राउंड ऑफ 64 की कई अहम मैचेस खेले जाएंगे। भारत की श्रीजा अकुला का मुकाबला चीन की खिलाड़ी हे जोआजिया से होगा, जबकि मोनिका बत्रा का सामना रोमानिया की खिलाड़ी एलिजाबेथा समारा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी।
शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मुनक़िद एक प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर को नुमाया किया है। अखबार ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान विरासत, साइंस और एतमाद का रिश्ता है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि भारत मालियाती इस्तेहकाम की राह पर गामजन है और कर्ज में कमी के हदफ की तरफ बढ़ रहा है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने माली साल 2025-26 के दौरान खवातीन की फलाह बहबूद के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने की खबर को पहले सफे पर शाये किया है।
और खास खबर एक बार फिर, दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सियासी रहनुमा वोटरों को रागिब करने की आखिरी कोशिशों में सरगर्म है। वक्फ बिल से मुतालिक JBC की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुल्क लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मुल्क मुखालिफ बयानियों का खात्मा करें। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड्स के विज आन जी इलाके में बावकार टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। और मर्दों के T20 क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।